तो कथा द्वारका से आरंभ होती है और इतनी सुंदर कथा है, बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ, सब गर्मी वर्मी भूल जाएंगे आप, इतना सुंदर कथा है ये, बड़ी मधुर कथा है भगवान की। आप जानते हैं भगवान ने 11 साल 52 दिन तक ब्रज में निवास किया और ब्रजवासी को बड़ा आनंद दिया। उन्होंने अपने भगवान के पद को भी भूलकर, भगवत्ता को छोड़कर भगवान वहाँ पर एक सामान्य बालक की तरह रहे। यहाँ तक कि चोरी भी किया उन्होंने, हाँ मट्टी भी खाया, माखन चोरी किया, दही चोरी किया, दूध चोरी किया, गिरिराज को उठाया, क्या नहीं किया भगवान ने, ऐसा अद्भुत कार्य किया कि किसी भी अवतार ने आज तक नहीं किया है। तो ऐसे भगवान ब्रजवासियों को कुछ दिन संग देकर फिर अचानक चले जाते हैं मथुरा में, और फिर 100 के ऊपर साल तक वहाँ पर नहीं आते हैं, और सभी ब्रजवासी जो हैं उनके विरह में अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसी थी जो भगवान के संगी चली गई, वह है रोहिणी माता, बलराम जी की माता जी। यशोदा मई तो वही रह गई, लेकिन रोहिणी माता जी वसुदेव की पत्नी थी ना, तो जब ये वसुदेव जी वहाँ पर जेल से रिहा हो गए, तो जिस कारण से रोहिणी को भेजा गया था कि भाई वो तो जेल में चले गए देवकी के साथ में, तो और एक पत्नी का नाम रोहिणी है तो वो भी गर्भवती थी, इसलिए उनको सुरक्षा के लिए भेज दिया गया था। लेकिन जब भगवान ने कंस का वध किया तो रोहिणी का फिर जाने का समय हो गया, फिर रोहिणी चली गई। तो सारे ब्रजवासी सब ब्रज में रह गए, लेकिन एक व्यक्ति जो ब्रज में थी किसी कारण से वापस चली गई, मथुरा गई पहले। कि मथुरा पर जरासंध ने, आप जानते ना, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने उनका पराभव किया, लेकिन 17 बार भगवान भाग गए। लीला करते भगवान, रणछोड़ नाम से प्रसिद्ध हो गए, बड़ी लंबी कथा है वो भी नहीं बताएंगे। तो 17वीं बार जब जरासंध आक्रमण करने ही वाला था, तो उस समय भगवान ने ना एक अद्भुत कार्य किया, रातों रात द्वारका बनाई विश्वकर्मा को बुलाकर। और आपको ना बड़ा अच्छा लगेगा अगर समझो आप मथुरा में रात को सोए और अगले दिन द्वारका में उठे, कितना अच्छा रहेगा। कोई शिफ्टिंग का कष्ट नहीं, कोई सामान कौन सा चाहिए, कोई फेंकना है, क्या रखना है, और कौन सी जगह ले जाना है, कैसे ले जाना है, कितना टाइम लगेगा, फिर वहाँ पर उनको अनपैकिंग करना है, फिर पूछते रहेंगे ये कपड़ा कहाँ गया, वो कंघी कहाँ गई, वो साबुन कहाँ गया, मिलता ही नहीं 3-3 महीने तक। आपको पता ना शिफ्टिंग की लीला कैसी होती है, शिफ्टिंग करते ना तो कई दिन तक चीज़ें मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ रखा गया। यहाँ तक कि आप जब बैग भरते ना आपके, अभी उड़पी आए आप, तो भी आपको पता नहीं चलता ये कंघी कहाँ रखी, वो टूथपेस्ट कहाँ रखा, वो किधर रखा, वो पुस्तक किधर रखी, थोड़ा टाइम लगता है बैग खोलने के बाद। थोड़ा अभी भी मैं रूम पे जाकर वही कर रहा था, ढूंढ रहा था। तो ये मथुरावासी लोग है ना, वो भगवान ने विश्वकर्मा को रातों रात बुलाया और रातों रात प्लान दिया, ब्लूप्रिंट, और एक ही रात के अंदर पूरी द्वारका नगरी समुद्र से जमीन लेकर, वरुण देवता से भगवान ने आदेश देकर जमीन पैदा किया और उस जमीन पर पूरा द्वारका नगरी खड़ा कर दिया, और लोगों को यहाँ सुलाया और अपने नए घर में उठाया उनको। वो भी उठे तो अरे द्वारका में, अचिंत्य शक्ति, भगवान की अचिंत्य शक्ति है ना, निर्माण शक्ति, हाँ परास्य शक्ति विविधाई वस्तुयते, भगवान के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, उसके अंदर एक निर्माण शक्ति है भगवान की। ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता है, कोई देवता नहीं कर सकता है, ना ब्रह्मा कर सकता है, ना शिव जी कर सकता है, ना गणेश जी कर सकते हैं, केवल भगवान ही कर सकते हैं। और अनेक ऐसे महल बनाए ना, हर एक रानी के अलग रंग के महल बनाए, बोलो किसी का महल गुलाब कमल के आकार का, किसी का किसी और फूल के आकार का, क्या बताएं, क्या वर्णन करें। भागवत में पूरा वर्णन दिया है कैसे कैसे एक एक रानियों का महल था, 16,108 महल बनाए, फिर मंत्रियों के महल अलग, राज दरबार जो था ना वो इंद्र से इम्पोर्ट किया उन्होंने, सुधर्मा राजसभा जो थी वहाँ से इम्पोर्ट किया भगवान के लिए, लाके दिया उन्होंने, मेरी पूरी असेंबली भेंट कर दी उनको। ऐसा अद्भुत द्वारका नगरी। अभी फिर मथुरा से ही सब शिफ्ट हो गए द्वारका में, तो रोहिणी माता भी वहाँ चली गई ना, अभी तो भगवान की 16,108 पत्नियाँ भी हो गई थी, विवाह भी हो गए थे, बहुत सारी स्टोरी उसके अंदर है, एक एक का विवाह कैसे हुआ। लेकिन जब ये घटना घटी तो 16,108 पत्नियाँ ऑलरेडी मौजूद थी, और देवकी भी थी वहाँ पर, क्योंकि वो भी थी ना मथुरा में ना, वो भी रिहा हो गई, फिर उनको भी वहाँ पर लाया गया, उनका एक महल बनाया गया उनके लिए। अभी देवकी कैसी थी बेचारी, देखो जन्म हुआ कृष्ण का, एक ही बार स्तनपान कराया बस, ओनली वन टाइम ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद में सीधा उनको भेजा गया, फिर दर्शन नहीं हुआ। एकदम बड़े होकर जब कंस को मारने आए ना, तभी दर्शन हुआ। पूरा बाल लीला का समय जो है ना, वो दर्शन ही नहीं हुआ। समझो, आप सोच सकते हो, आपका बालक था, कोई किसी कारणवश कहीं भेजना पड़ा उसको, और पूरा बड़ा होने के बाद ही आपको दिखाई पड़ा उसको पूरा, उसके नन्हे नन्हे तोतले तोतले बोल सब खत्म, आपके लिए कुछ है ही नहीं। उसका देवकी का ऐसा दुख था कि मुझे मेरे प्रिय कृष्ण का जो बाल लीला का जो दर्शन था वो हुआ ही नहीं, लेकिन रोहिणी मैया को हुआ था, क्योंकि रोहिणी मैया वहाँ पर थी। अभी अगर हम और आप होते ना तो ईर्ष्या करते आपके एक दूसरे के ऊपर, लेकिन देवकी माता के मन में ऐसा भाव नहीं था, बड़ा आदर करती थी कि आप कितनी भाग्यवान हो। तो वो चर्चा करते थे, अभी खबर तो आती रहती ना, अभी गिरिराज को उठाया, अभी अरिष्टासुर का वध किया, वे रासलीला रचाई, वे माखन चोरी किया, ऐसी खबरें तो आती थी लेकिन दर्शन नहीं होता था। लेकिन जब ये द्वारका आए ना, तो सभी कन्याओं के पत्नियों के भी बीच में चर्चा चलने लगी, हमारे पति थे ना ऐसे ऐसे करते थे ब्रज में, ऐसी चटपटी लीला करते थे, सभी ब्रजवासियों को मन मोहित कर लिया था उन्होंने। तो सभी पत्नियों के मन में भगवान के बाल लीलाओं के विषय में सुनने की इच्छा उत्पन्न हो गई। और मालूम है ना कैसे, मैंने आपसे बात किया, आपने इनसे बात किया, इनसे उससे बात किया, सब ऐसे बात फैल के ना वो तीव्र इच्छाएं और तीव्र और तीव्र और तीव्र होने लगी, और देवकी की भी इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी सुनना है। और सब लोग रोहिणी को आग्रह करने लगे, रोहिणी माता आप बताइए हमको, आपने सब आंखों देखा हाल देखा है, आप बताइए। तो रोहिणी बड़ी बुद्धिमान थी, वो जानती थी, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, मैं तो करूंगी कथा आपके लिए, लेकिन ना जहां पर भी कृष्ण की कथा होती है, जैसे अभी यहां पर हो रही है, जहां पर भी कृष्ण की कथा होती है वहां पर कृष्ण बलराम तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण बलराम की। इसका मतलब कृष्ण बलराम आपके बीच में भी अभी है, क्योंकि उन्हें भी अपनी कथाओं को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, वो बार बार कृष्ण की कथा करते हैं ताकि वो कृष्ण बलराम को अपने बीच आकर्षित करते हैं, और अपने बीच में लाकर अदृश्य रूप में क्यों ना हो उनका संग प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवत कथा सुनते समय अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। ये नहीं कि वक्ता बहुत निपुण है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत श्लोकों को पढ़ लिया उन्होंने, बहुत अभ्यास कर लिया, इसके वजह से नहीं होता है। वो जब कथा भगवान की होती है तो तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं उस कथा के बीच में अदृश्य रूप में, और भगवान के सानिध्य का जो अनुभव है वो इतना आनंददायी होता है कि मूलतः वह कितनी कथा सुंदर थी, लेकिन कथा के होने की वजह से, कथा को कहने की वजह से, उसके ध्वनि की वजह से भगवान स्वयं आकर्षित होकर वहाँ प्रकट होते हैं, वहाँ बैठकर पूरी अपनी कथा सुनते हैं। लेकिन जब बैठते हैं तो सारे कथा में आने वाले भक्तों को अपने सानिध्य का अनुभव देते हैं, उनके आते ही सारे धाम वहाँ प्रकट हो जाते हैं, उनके आते ही सारी नदियाँ वहाँ प्रकट हो जाती हैं, सारे कुंड वहाँ प्रकट हो जाते हैं, सारी लीला स्थलियाँ प्रकट हो जाती हैं, सारा पवित्र जितने भी स्थल हैं 84,00,000 वो सब वहाँ प्रकट हो जाते हैं, सारी पवित्र नदियाँ वहाँ बहने लगती है भगवान के आते ही, तो भगवान स्वयं धाम है। खैर, तो रोहिणी बता रही है कि देखो मैं कथा शुरू करूँगी ना तो वो आएंगे तुरंत, और जब मेरी मुंह से कथा सुनेंगे अपनी बाल लीलाओं की तो तुरंत दारुक अपने सारथी को बुलाएंगे, दारुक रथ लगा दे, अभी हम ब्रज में जाएंगे। और जब ब्रज में जाएंगे तो कब लौटेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप क्या चाहते हो, आपके पति आपके साथ रहे कि यहाँ से चले जाकर ब्रज में रहे, क्या चाहते हो आप? नहीं नहीं नहीं, हमारे पति हमारे साथ होने चाहिए। कोई बात नहीं, आप मत बताना कथा, लेकिन हम उनका विरह सहन नहीं कर सकते। वैसे ही वो गोपियाँ तो सहन कर ही रही है उनके विरह को, लेकिन हम नहीं कर सकते, हम तो उनकी पत्नियाँ हैं। लेकिन फिर उसकी इच्छा प्रकट होती है बाल लीला सुनने की, फिर बातचीत होती है, फिर वही बात कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करके कई बार ये बात टाले जाती है। एक बार कहते हैं कि अरे इसका भी कोई उपाय होना चाहिए ना, इसका भी कोई उपाय होगा कि हम कथा भी करें वो आए भी नहीं और हम सुनते भी रहे, ऐसा इच्छा करने में कोई प्रॉब्लम क्या है कि हम कथा करें, आप कथा करें, हम सुने मग्न होकर, लेकिन वो नहीं आए बीच में, ऐसा कुछ उपाय हो सकता है क्या? तो फिर बहुत रानियाँ सोचती हैं, वो कहते हैं काम करेंगे ना, हम वो आएंगे तो देखेंगे ना, कहीं से तो गेट से आएंगे ना, अभी समझो यहाँ से आएंगे तो यहाँ से आएंगे, इधर से आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे दरवाजे बंद कर देंगे अपने महल के, सब बंद कर देंगे और एक दरवाजे पर बंद करके सुभद्रा देवी को, भगवान की बहन को खड़ा करेंगे। उसका काम क्या होगा, हम जब अंदर कथा करेंगे तो उनको देखना है, कहीं तो आ तो नहीं रहे, जगे रहकर सतर्क रहकर देखना है कि वो नहीं आना चाहिए। और जैसे ही दूर क्षितिज पर देखेंगे तो नॉक करना है, तुरंत दस्तखत देनी है कि आ रहे हैं, हम लोग तुरंत सब लोग भाग जाएंगे, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, सब लोग चले जाएंगे, उनको मौका ही देंगे नहीं सुनने का और वो ब्रज में जाने की इच्छा उत्पन्न होने का मौका ही नहीं देंगे। हो गया, वे बढ़िया प्लान है बहुत, ये तो फुल प्रूफ प्लान है, इसके अंदर हमको कथा भी मिलेगी ना, वो ब्रज में जाएंगे, वो सब कुछ फिट प्लान है। लेकिन जैसे आप 27 तारीख को उडुपी आने वाले थे और आपको पता नहीं था कि राष्ट्रपति आने वाले हैं, मुझे भी पता नहीं था, हमारे पूरे प्लानिंग के राष्ट्रपति कहीं थे ही नहीं लेकिन आ गए बीच में। वैसे एक ही बात थी जो इतनी सारी बेस्ट योजना के अंदर सोची भी नहीं गई थी कि ऐसा भी हो सकता है, कल्पना के परे थी वो बात। वो बात क्या है मैं बताता हूँ आपको, अभी कैसे अभी सब सेटिंग कर देना पूरा। हाँ, रोहिणी देवी बैठ गए यहाँ पर, जैसे ही माता जी बैठी ऊपर, वैसे देवकी जी को बड़ा अच्छा स्थान दे दिया, क्योंकि देवकी जी वो तो माता है भगवान की, तो उनको भी स्थान दिया गया। सब रानियाँ बैठ गई 16108, और इनको बिठा कर बोलो सुनो, सुनाओ कथा, सुना दो अभी आप। तो अभी देखो आप सब लोग अंदर बैठे कथा सुन रहे हैं, अरे बेचारी एक बाहर खड़ी है दरवाज़ा बंद करके, उसको सुनने की इच्छा नहीं क्या? तो वो भी कान लगा के खड़ी हो गई, कुछ ना कुछ सुनाई पड़ेगा कम से कम। मैं तो खड़े होकर एक कान लगा कर दूसरा कान फिर देख रही हूँ, उधर आएगा तो देखूंगा मैं भैया। लेकिन वो कथा इतनी मधुर थी, आप सोच सकते हैं क्या? रोहिणी माता जो साक्षात वात्सल्य मूर्ति है, सर्वश्रेष्ठ वात्सल्य मूर्ति है यशोदा देवी भगवान की, उसके बाद नंबर लगता है रोहिणी देवी का, उसके बाद नंद महाराज हैं, उसके बाद वसुदेव देव की, उसके बाद गोपियां हैं ब्रज की, उसके बाद देवकी का नंबर बहुत बाद में है, क्योंकि वो मथुरा में थी ऐश्वर्य, उनको नॉलेज था कि ये भगवान है, इन लोगों को पता नहीं था कि भगवान है, किसी भी गोपी किसी गोपी को पता नहीं था कि ये भगवान है, उनका निरपेक्ष प्रेम था, ऐसा नहीं कि भगवान है इसलिए प्रेम, ऐसा नहीं था। तो नंबर दो की वात्सल्य मूर्ति जब वात्सल्यपूर्ण कथाएं करने वाली है तो कितनी मधुर होगी कथा। हम तो कहें रटे हुए कथा करते हैं, हमने तो पढ़ पढ़ के सुन सुन के रट रट के याद करके बोल रहे हैं, वो भाव तो अलग होता है ना, जब माँ कथा कहती है अपने बालक की तो अलग होती है, और कोई अध्यापक कहेगा तो कथा अलग हो जाएगी, वही कथा है वो। लेकिन जब माँ उस कथा को बताती है अपने बालक के बारे में तो उसमें मिठास आ जाती है ना, माधुर्य आता है, वात्सल्य के माधुर्य आ जाता है। तो ऐसी कथा जब शुरू हो गई ना, वैसे ही वहां पर सुभद्रा देवी भाव विभोर हो गई, पूरी तरह से भाव विभोर हो गई। और अभी वो क्या बताऊं, बहुत लंबा वर्णन है उसका, लेकिन संक्षेप में कहने का मतलब यह है कि वो बेहोश हो गई, भाव विभोर होकर बेहोश हो गई, गिर गई वो। और ये पार्ट जो था ना उनके प्लान के अंदर अंतर्गत नहीं था ये प्लान कि वो बेहोश भी हो सकती है हु विल थिंक लाइक दैट, हम तो बेहोश नहीं हो रहे हैं, वो कैसे हो रही, ये तो मग्न होकर सुन रहे हैं, वो बेहोश हो गई। और जैसे कहा गया था वैसे भगवान कृष्ण बलराम प्रकट हो गए वहां पर तुरंत, जहां पर उनकी कथा हो रही है, और देख रहे आश्चर्य से ये कि मेरी बहन जी को क्या हो गया, अंदर जरूर कुछ चल रहा है। तो दोनों तरफ खड़े होकर दोनों कान लगाते दरवाजे पर, और दोनों अपनी कहानी सुनने में इतने मग्न हो जाते हैं कि कुछ देर बाद में उनके शरीर में बहुत परिवर्तन होते हैं। उसका तो बहुत लंबा वर्णन है, लेकिन उसका भी संक्षेप में वर्णन यह है कि दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं, और वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, उनका वैसे प्राकट्य हुआ। इसलिए उडुपी का और जगन्नाथपुरी का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि एक ही कथा के माध्यम से महल के बाहर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और महल के अंदर कृष्ण बलराम प्रकट हो गए। तो अभी बाहर की कथा वहीं समाप्त करते हैं, वो जब जगन्नाथपुरी जाएंगे ना तो वहाँ की कथा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, उस कथा को यहीं रोक लेते हैं बाहर। अभी अंदर चलिए आप, अभी अंदर तो रोहिणी माता ऐसे भाव में आ गई है, क्योंकि अभी कुछ को टेंशन नहीं है, कृष्ण बलराम तो आने वाले नहीं है, बाहर तो पहरेदार खड़ा कर दिया है। तो बिना किसी रुकावट से, बिना किसी अवरोध से, बिना किसी बाधा से वो सुनाती जा रही है इतनी मधुर कथा, जैसे कि सारी रानियां और देवकी जो है ना वो सागर में डूब रही हैं वात्सल्य और प्रेम के। और अभी कथाएं बढ़ रही ना, अभी जब जन्म हुआ फिर रेंगते थे भगवान, फिर ऐसे हुआ, फिर खड़े हो गए, फिर इसका वध किया, फिर उसका वध किया, फिर इतने साल के हो गए, फिर वत्सपाल बछड़ों को चलाना शुरू किया, फिर माखन चोरी शुरू किया, फिर गौशाला में गोबर में और गोमूत्र के मिक्सचर में रेंगना शुरू किया, फिर क्या क्या किया, सब वर्णन आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और अचानक जब वो वर्णन अपनी परिसीमा पर था ना, वर्णन के परिसीमा पर, भाव के परिसीमा पर, वात्सल्य के परिसीमा पर था, उस समय सबके बीच में अचानक बालक कृष्ण बलराम प्रकट हो गए। अभी बाहर जो बेहोश गिरे हुए ना वो बड़े, मतलब क्या कहते हैं उसको, फुल्ली ग्रोन अप एडल्ट, मतलब राजा है अभी वो, ऐसे अवस्था में बाहर गिरे हुए हैं, लेकिन अंदर बाल लीलाओं का प्रभाव चल रहा है ना, बाल लीलाओं का वर्णन चल रहा है, तो बाल लीला के वर्णन के अनुकूल बाल स्वरूप में प्रकट हो गए वो, नग्न अवस्था में, हाथ में मतनी लिए हुए, एक हाथ में दोरी लिए हुए, ऐसे प्रकट हो गए वो दोनों भाइया। और जैसे ही देवकी ने उसको देखा ना, उनको देवकी के स्तनों से नदियां बही दूध की, वात्सल्य की वजह से, इतना वात्सल्य जागृत हो, क्योंकि उन्होंने इतने छोटे सुंदर रूप में कृष्ण बलराम को दिखाई नहीं था उन्होंने कभी, इतने मधुर मेरे बालक हो सकते हैं, उन्होंने तो नवजात शिशु को देखा था ना, लेकिन इतने सुंदर मेरे बालक हो सकते हैं उनको कभी अनुभव नहीं हुआ था। जब पहली बार दर्शन किया तो दूध की नदियां बही और वो बेहोश हो गई वहां पर, इतना प्रेम से वो व्याकुल हो गई। और रुक्मिणी को खास करके उस कृष्ण के प्रति इतना प्रेम पैदा हुआ माँ के रूप में, सोच सकते आप, जो अभी उनके पति हैं, पति देव हैं, उनका अलग रस है उनके साथ में, श्रृंगार रस है उनके साथ, लेकिन फिर भी उस एडल्ट यानी पूर्ण जिसकी जिसका विकास हुआ है शरीर का, वो उनके पतिदेव होने के बावजूद भी उस बालक स्वरूप के प्रति उनके प्रति मन में बहुत वात्सल्य भाव जागृत हो गया, माँ का भाव जागृत हो गया, तो वो दोनों फिर अदृश्य हो गए। कुछ समय दर्शन दिया कृष्ण बलराम ने, वो दोनों अदृश्य हो गए और लीला समाप्त हो गई। बाहर जो हुआ वो बाद में बताएंगे आपको, लेकिन फिर यहाँ पर लीला समाप्त हो गई। कुछ समय बाद में उन्होंने अपने प्रपोत्र यानी ग्रेट ग्रैंडसन है ना वज्रनाभ को बुलाया और कहा कि हमें मूर्ति बना दो उनकी, हम उनको वात्सल्य भाव से लाड़ लड़ाना चाहते हैं। तो दो मूर्तियां बनी, वज्रनाभ ने बना दी, उन्होंने वर्णन किया पूरा, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में छा गया था वो दर्शन पूरा, तो कण कण उसके शरीर का उनको याद था, पूरा वर्णन किया और वज्रनाभ ने मूर्तियां बनाई। और कहते हैं रुक्मिणी ने आजीवन अपनी द्वारका लीला समाप्त होने तक इन दोनों का पूजन किया अपने अंतर के गर्भगृह में, अपने पूजित भगवान के रूप में उनका पूजन किया। और फिर जब भगवान अंतर्धान हो गए तब ये जो दोनों मूर्तियां हैं वो आप जानते हैं ना, जब भगवान अंतर्धान हो गए तो समुद्र ने पूरा अपना जगह घेर लिया दोबारा, जो भगवान की लीलाओं के लिए दिया था जगह भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान ने कहा था कि जब मैं अवतार समाप्त करूँगा आपको पुनः अवरुद्ध कर लेना है द्वारका को। तो जैसे ही भगवान ने अवतार समाप्त करने का निर्णय लिया तो अपने उन्होंने अपने सारे प्रियजनों को द्वारका के बाहर ले गए वो, और आज जो द्वारका है ना, जो प्रकट द्वारका आज है, जो जमीन पर थी वहाँ पर उनको विराजमान किया उन्होंने, और उनके आंखों के सामने द्वारका जल से जलमग्न हो गई। तो उसमें वो दो मूर्तियाँ जो है ना, वो जहाँ गोपी तालाब था ना मूल द्वारका में, गोपी तालाब जहाँ पर गोपियाँ कहते हैं कि वो चंदनमय हो गई, वहाँ पर एक बार आई थी गोपियाँ वहाँ पर, वो भी लंबी कहानी छोड़ो उसको, तो वो गोपी तालाब में चंदन के द्वारा ये दोनों मूर्तियाँ लिप्त हो गई भगवान की इच्छा से, और समुद्र के तले ही बंधी रही बहुत समय तक। अभी द्वापर युग समाप्त हो गया, भगवान अंतर्धान हो गए, बलराम जी अंतर्धान हो गए, यादवों का भगवान ने उद्धार कर दिया, द्वारका नगरी समुद्र में छोड़कर जमीन में बसा लिया उन्होंने, वो सब चले गए और भगवान के जो वंशज हैं वो अपना कारोबार करने लगे। यथावकाश कलयुग शुरू हुआ, हाँ 12वीं शताब्दी, क्या कहते हैं उसको, सदी शुरू हो गई, 12th century, मतलब 1200 साल बीत गए कलयुग के। तो वो भगवान की इच्छा से दो जो थे ना वो किनारे पे आ गए, चंदन के ठेला, और एक व्यापारी जो था ना वो निकला वहाँ से समुद्र से द्वारका से व्यापार करने के लिए दक्षिण की ओर, और यहाँ पर मध्वाचार्य का जन्म हो चुका था। अब वो लीला आपको बताएंगे, मध्वाचार्य का पूरा लीला बताएंगे, अभी ये जो भाग आ रहा है उसका जीवन का वो सुन लीजिए आप। तब मध्वाचार्य तो बुजुर्ग थे, मतलब जवान अवस्था में थे, सन्यासी बन चुके थे, मध्वाचार्य बन चुके थे, उनका नाम वासुदेव था पहले, मध्वाचार्य सन्यासी रूप में थे, अपने 35 शिष्यों को लेकर ना वो समुद्र किनारे पे द्वादश स्तोत्र का क्या कहते हैं उसको बना रहे थे, उसको काव्य रच रहे थे। उनको पता था, अंदर से उनको इंट्यूशन था कि कुछ लीला होने वाली है भगवान की, इसलिए वो समुद्र किनारे टहल रहे थे। उतने में वो जहाज आया और वो दूर दिख रहा है कि वो चक्री वादल जो है ना, वो झंझावात, वो समुद्र के अंदर है और वो एक जहाज गोल 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 घूम रहे हैं। और वो वहां से पुकार सुनाई पड़ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो मध्वाचार्य जो ना वायु के अवतार थे, वायु के तीन अवतार हुए हैं, एक हनुमान जी, एक भीमसेन जी और एक मध्वाचार्य। तो उन्होंने क्या किया, अपना फेटा निकाला और ऐसे हवा में घुमाया, और हवा में घुमा के पूरी हवा की दिशा ऐसे खींची उन्होंने इस तरफ अपनी ओर कि वो जहाज को ही खींच कर किनारे पे लेके आए। ये आज के दुनिया जमाने में कोई नहीं कर सकता है, केवल भगवान का अवतार ही कर सकता है। और आपको लगेगा भी ये तो क्या बकवास बातें कर रहे हैं, कोई फेटा घुमा रहा है, कोई बोट को जमीन पर खींच के लेके आ रहा है, ये सब क्या हो सकता है। ये कथाएं जो है वो श्रद्धालुओं के लिए है, जिन भगवान पर श्रद्धा रखते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, उनके अवतार क्या नहीं कर सकते। तो वो जहाज आया तो व्यापारी बहुत खुश हो गया। उन्होंने कहा, महाराज जी वो सब व्यवहार व्यापार करने के लिए आया था मैं, आप सब ले लो, आपको क्या चाहिए वो सब ले लो। तो ये तो यति थे ना, यति यानी सन्यासी थे। उन्होंने कहा, मुझे आपके इसी किसी भी वस्तु में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो केवल दो चंदन के जो आपने अपने बोट को बैलेंस करने के लिए द्वारका से किनारे से उठाकर अपने बोट पे रखे थे ना, बोट को स्थिर करने के लिए, वो मुझे चाहिए। तो कहते ले लो आप। तो 35 शिष्य जाते हैं, लेकिन 35 शिष्य मिलकर भी एक उठा नहीं सकते हैं चंदन का गोला। फिर वो यहाँ जाते हैं दूसरी तरफ, दूसरा गोला उठाएं, वो भी नहीं उठा सकते, बहुत लंबा था वो, ऐसा नहीं कि छोटा सा था। 35 शिष्य भी उठा नहीं पाए, दोनों तरफ गए, दोनों तरफ हार गए। फिर क्या हुआ, फिर अकेले मध्वाचार्य गए, एक हाथ में एक को उठाया, दूसरे हाथ दूसरे में उठाया। बड़े अद्भुत पराक्रमी थे वो, बलशाली थे बहुत। बहुत कहानी आपको बताएंगे, उनके जन्म स्थान जाएंगे तब बताएंगे उनकी कहानियां। तो भगवान की इच्छा से एक हाथ से एक जो चंदन का गोला था बड़ा वजनदार, वो गिर गया। और ये सब कहाँ हुआ, जहां पर आज दोपहर में आप गए थे ना सैर करने के लिए, मलपे बीच। उस मलपे बीच में आपने तो बड़ा आनंद लिया, लेकिन उस मलपे बीच में ये सब लीलाएं हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोट भी वहां पर आई थी, उसको वड़पांडी कहते हैं उस जगह को, वड़पांडी यानी जहां पर वो जहाज आया था, वो समुद्र किनारे को वड़पांडी कहते हैं। तो मध्वाचार्य ने उठाकर जब वापस चलने लगे अपनी उड़पी की ओर, जो कुछ फ्यू किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर, तो किनारे पे ही वो मूर्ति का जो गोला था वो गिर गया और उसका दो भाग हो गए। उसमें से बलराम जी की मूर्ति प्रकट हुई। वो बलराम जी ने स्वयं मध्वाचार्य से कहा प्रत्यक्ष रूप में कि मुझे आप यहीं पर स्थापना करो। तो आप लोगों ने दर्शन किया क्या मंदिर में, कि केवल पानी में खेलते रहे आप, नहीं ना? हाँ, तो देवताओं की तरह हो जाएंगे आप, गए थे बलराम को देखने के लिए और पानी में ही खेलते रहे। ये देवताओं की अवस्था ऐसी होती है, करना कुछ चाहते लेकिन इतना मुंह में फंस जाते हैं कि क्या कहें। तो वड़बांडेश्वर के रूप में मध्वाचार्य ने स्वयं उनको समुद्र किनारे पर स्थापन किया। वो बलराम जी का मंदिर है, बहुत शक्तिशाली मंदिर है वो। हो सकता है आज की तारीख में लोगों वहाँ जाते नहीं होंगे, वो बहुत प्रसिद्ध नहीं होगा, बहुत धन संपत्ति नहीं होगी, लेकिन भगवान का मंदिर बाहर से गरीब होने से और बाहर से अमीर होने से ऊपर नीचे नहीं होता है। भगवान तो भगवान ही है, आप चाहे पहचानो मत पहचानो, भगवान तो भगवान ही रहते हैं। तो फिर वो भगवान को वहाँ पर स्थापन करके अच्छी तरह से उनकी पूजा करके फिर दूसरा चंदन का गोला लेकर वो निकले और चल के आए यहाँ तक जहाँ पर आज भगवान कृष्ण का मंदिर है। लेकिन तब मंदिर नहीं था वो, तब एक सरोवर था वहाँ पर जो आज भी वहां पर है, मध्व सरोवर, अघनाशिनी सरोवर, पापनाशिनी सरोवर कहते हैं उसको, जहां पर गंगा जी प्रकट हुई, उसकी कथा भी आपको बाद में बताएंगे। तो वो सरोवर वहां पर था जहां पर गंगा जी प्रकट हुई थी मध्वाचार्य के लिए, मध्वाचार्य के प्रभाव से वहां पर गंगा जी प्रकट होकर वो कुंड बना था। तो वहां पर जाकर उन्होंने उस चंदन को डाल दिया और चंदन पिघल कर उसमें से कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई, और उस कृष्ण की मूर्ति को उस कुंड के बाजू में उन्होंने स्थापना किया, जो आज आपके सामने उड़पी कृष्ण के रूप में विराजमान है। बोलो उड़पी कृष्ण भगवान की जय हो। तो ऐसे द्वारका में रुक्मिणी के द्वारा पूजित जो विग्रह है भगवान के बाल स्वरूप, वो आज आपके सामने उड़पी कृष्ण के रूप में विराजमान है। उनके हाथ में मथनी है जो उनके ही ऊंचाई के बराबर है ऑलमोस्ट, और एक हाथ में दोरी है जिससे मंथन करते हैं दही मंथन। बहुत ही सुंदर लुभावना स्वरूप है बाल स्वरूप उनका, और रोज यहां पर उनकी यशोदाओं के भाव में सेवा की जाती है, बाल स्वरूप। यहां पर एक मक्खन भी लगा देते उनको, चाहे कोई भी भेष पहनाते उनको, कोई देवी बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन यहां पर मक्खन का एक बूंद रखते हैं, उसको चाटते रहते हैं हमेशा, वो अलग अलग भेष में भी। तो ये उडुपी का महात्म्य है। हाँ, उडुपी बहुत ही अद्भुत नगरी है। कैसे भगवान देखो अपनी लीला कैसे करते हैं, कैसे अपने आप को प्रकट कराते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। वैसे ही द्वारका से वो गुरुवायूर जी आए थे और वो वहाँ पर गुरुवायूर में स्थापन हो गए, उसकी भी बड़ी अद्भुत कहानी है। मतलब खुद आकर जब लीला करते हैं तो खुद आकर लीला करके चले जाते हैं, उसके बाद भी उन लीलाओं का एक्सटेंशन वो करते रहते हैं। अपने जाने के बाद भी जनता को अपना अस्तित्व का, लीलाओं का लाभ होते रहना चाहिए, इसलिए भगवान किसी न किसी बहाने अलग अलग रूप पैदा करते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान होकर वृंदावन से चले गए तो श्रीनाथ जी गोपाल जी के रूप में प्रकट हो गए, और फिर उन्होंने कई सालों तक लीला किया। गोकुलनाथ जी, विट्ठलनाथ जी, अष्टछाप, सूरदास जी, चित्त स्वामी, परमानंद स्वामी करके बहुत लोगों के साथ लीला किया उन्होंने, साख्य भाव की इच्छा को पूर्ण किया उन्होंने। ऐसे भगवान के अद्भुत स्वरूप भगवान को जाने के बाद भी भगवान निर्माण करते हैं और लीलाओं को जारी रखते हैं। जो श्रद्धालु हैं उनको लीलाओं का लाभ होता है, उनको दर्शन भी होता है। आप बड़े भाग्यशाली हो जिन विग्रह के साक्षात रुक्मिणी देवी ने आजीवन कृष्ण उनके पति होने पर भी उनके बाल स्वरूप में उन्होंने सेवा किया है, लाड़ लड़ाए हैं, माँ के लाड़ लड़ाए उस मूर्ति के, वो मूर्ति आपके सामने आज विराजमान है। तो दर्शन कीजिए, उसका आनंद लीजिए। और 5 बजे सुबह आप जाएंगे ना तो सारे कल के वस्त्रों को, गहनों को उतार देते हैं और मूल विग्रह प्रकट हो जाते हैं, और मूल विग्रहों का पंचामृत अभिषेक होता है, आपके आंखों के सामने होता है और CCTV पर भी दिखाई पड़ता है। तो आप कल सवेरे वहां पर जाइए 5 to 7 AM, कोई भीड़ नहीं होती है, आप अनंत बार दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन को आपको मना भी कर देंगे, आपको हो गया बहुत बार, अभी आप खड़े रहो तो आप TV पे देख सकते हैं। पूरे कई 10-50 बार पूजा होती है उनकी, अलग अलग प्रकार के दीपों से, और कभी केलों से अभिषेक करते, कभी शक्कर से अनुभव अभिषेक करते, कभी दही से करते, कभी दूध से करते हैं, कभी गर्म पानी से नहलाते हैं, ऐसा बाफ निकलती है उनके शरीर से, वो सब आप देख सकते हैं। उनका श्रृंगार भी आप देख सकते हो। बीच में एक समय आता है 7 से 7:30 ऐसे कहते हैं, कभी बदलता है समय, वो उस समय ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर आते हैं, तब सब दर्शन बंद हो जाते हैं, सब पुजारी भी चले जाते हैं और आधा घंटा वहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की सेवा करते हैं अपने देवताओं के साथ में। वो भी एक समय है बीच में उसका, तब आपको बोलेंगे अभी बंद, अभी आप बैठो उधर, खिड़की बंद रहेगी, आधा घंटे के बाद खुलेगी, फिर ये लोग वापस श्रृंगार आरती करेंगे। बीच में भगवान ब्रह्मा जी आकर सेवा करते हैं, सर दिन भर अनंत सेवाएं, बड़ी लिस्ट है, आपको पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, इतनी बड़ी लिस्ट है, 25 सेवाओं का 25 नाम है पूजाओं का, और एक एक पूजा में भी कई प्रकार की आरतियां होती रहती है, कभी कछुआ छाप अगरबत्ती होती है आरती होती है, कभी मछली छाप में अगरबत्ती आरती होती है, कभी मतलब आरतियाँ जो है ना मछली के छाप की होती है, कभी कछुआ के आकार की होती है, कभी किसी आकार की होती है, कभी गोल होती है, कभी चौकोनी होती है, कभी लैंप में होती है, कभी थाली में होती है, ऐसे प्रकार आप देखते रह जाएंगे, हाँ दंग रह जाएंगे आप। सुबह 3 बजे से लेकर शुरू होती है, रात को 9 बजे तक चलती रहती है कंटिन्यूअस। रात को शयन होता है उनका, शयनोत्सव मंडप पे, सोने के हैंडल बने होते हैं ना जिसके चामर के, वो चामर से उनकी शयनोत्सव सेवा होती है। सब देखने लायक है, आप देखिए जितना हो सके उतना देखिए। लेकिन हम दिन भर घूमते रहेंगे तो आपको सुबह 5 बजे उठकर जाएंगे ना, आपको बड़ा आनंद आएगा वहाँ। सुबह के समय वहाँ पर पुरुषों के लिए ऊपर का वस्त्र पहनना अलाउड नहीं है, तो आपको धोती या पैंट पहनेंगे तो आपको बनियन शर्ट सब निकालना पड़ेगा, और वैसे आपको अंदर दर्शन प्रवेश मिलेगा। तो आप ये सब ध्यान में रखिए और सुबह जाइए और आनंद लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 1000 बार बोले ना, बार बार देखो, 1000 बार देखो फिर भी आपका दिल नहीं भरेगा, ये इसमें आपको विश्वास होगा कल देखने के बाद। कितनी भी बार देखो आप, उधर एक ऐसी खिड़की है नवग्रह की खिड़की है, हाँ नवग्रह किंडी कहते हैं उसको, हाँ नहीं वो अलग किंडी है, वो अलग है, वो कल बताएंगे आपको, बाद में बताएंगे। तो वो जो नौ ग्रह की खिड़की है वो 9 छेद है उसके अंदर, तो आप 9 में से किसी भी छेद में देखेंगे आपका दिल नहीं भरेगा, और वहाँ से बोलेंगे हो गया हो गया हो गया, जल्दी जल्दी भागो बोलेंगे, पुलिस खड़ा होता है वहाँ पर, फिर आप वापस लाइन लगाएंगे, वापस गोल घूम के आएंगे, वापस देखेंगे, वापस गोल घूम के वापस देखेंगे, आपका मन नहीं भरेगा। और शाम को जाएंगे ना कभी 7:30, 8 o'clock को, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी बालक हमारे थक गए हैं, उनको नींद आ रही है, फिर लोहड़ी गाते हैं, उनको सुला देते हैं, बहुत देर तक लोहड़ी गाते हैं, पढ़ने में डालते हैं और सुला देते हैं उनको, फिर सुबह उठ के बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, उनको जगाते हैं। अब जल्दी 4 बजे उठेंगे ना, तो आपको लाउड स्पीकर पर वो जगाने वाले गीत सुनाई पड़ेंगे, बहुत बहुत सुंदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।